اللهم صل
صلي على
على محمد
محمد وآل
وآل محمد
محمد.
وعجل فرجه.
الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والذين دنا فتدلى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يعني نور الله أذن الله يد الله حبل الله عروة الوثقى غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب علي ابن أبي طالب عليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
زهرا بحق زهرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عشر محرم کی اب یہ آخری مجالسیں رہ گئی ہیں تو میں اپنے ٹاپک کو چینج کروں گی اور یہ مجلسیں روز محشر روز قیامت کس طرح برپا ہوگا اور کس طرح لوگ کس کس گروہ کی شکل میں آئیں گے اس پہ ہماری یہ دو مجلسوں میں آج اور کل کی مجلس میں اس ٹاپک پہ ہماری جو ہے وہ گفتگو رہے گی. عزیزان من رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں موت کی تمنا کرنا چاہتا ہوں میں مرنا چاہتا ہوں تو رسول اللہ نے کہا کہ تو روزے اکبر سے نہیں ڈرتا تو روز اکبر کے بارے میں اس کو پتا نہیں تھا. پھر رسول اللہ نے روز اکبر کے بارے میں جب اس کو تفصیلا بتایا جس کی ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ تفصیل کریں گے تو وہ مسلمان ہو گیا غیر مذہب کا تھا بہت ہی طاقتور تھا عمری نام تھا اس کا اور وہ مسلمان ہو گیا. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے خداوند متعال سے ایک درخواست کی اور خداوند تعالیٰ سے کہا کہ یا پروردگار عالم میں جب بھی دنیا میں جاتا ہوں تو نبی کریم رسول اللہ کے پاس ہمیشہ وہی لے کر جاتا ہوں مگر میں اکثر دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ جو ہیں وہ جب وائس کرتے ہیں اور جب مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ دین کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں تو مجھے بہت اشتیاق ہوتا ہے کہ میں اس محفل میں جا کر بیٹھوں. تو روایتوں میں ملتا ہے کہ خداوند متعال نے حضرت جبریل کو اجازت دی اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ جب وحی کے علاوہ آتے تھے مسجد نبوی میں آ کر بیٹھتے تھے تو رسول کا ایک خاص حضرت جبریل کے بیٹھنے کا ایک خاص ستون ہوتا تھا وہ وہاں آ کر بیٹھتے تھے اور وہ رسول اللہ کے جو ہیں وہ ایک صحابی جن کا نام داہیہ قلبی تھا وہ ان کی شکل اختیار کر کے وہ رسول اللہ کے دروس میں آتے تھے اور جب وہ ایک خاص ستون کے پاس بیٹھتے تھے تو سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو آئے ہوئے ہیں داہیہ قلبی ہیں. رسول کو بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ داہیہ قلبی کی شکل میں جو آئے ہوئے ہیں وہ جبرائیل ہیں داہیہ قلبی نہیں کیونکہ ایک الگ جگہ پر بیٹھتے تھے وہ خاص. تو ایک مرتبہ اسی طرح ایک محفل تھی اور حضرت جبریل اب میں جبریل کہہ کے چلوں گی ورنہ ہم کمپلیکیٹ ہو جائیں گے. حضرت جبریل اسی طرح آ کے ایک ستون کے پاس بیٹھتے ہیں اور ایک مرتبہ جو ہے رسول اللہ وائس کر رہے تھے رسول اللہ جب حدیث بیان کر رہے تھے تو اچانک سے رسول اللہ نے حضرت جبریل کے چہرے کو دیکھا تو ان کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو گیا. جب حضرت جبریل کا چہرہ زرد ہو گیا تو رسول اللہ ایک دم پریشان ہو گئے. پھر اچانک سے رسول نے اوپر نظر کی تو دیکھا حضرت اسرافیل آ رہے تھے اللہ کی वही या मैसेज लेकर। तो हजरत जिब्रील का चेहरा एकदम जर्द था और रसूल अल्लाह परेशान थे कि अचानक से हजरत इसराफील आए और रसूल अल्लाह से कहा कि या रसूल अल्लाह मैं एक मैसेज लेकर आया हूँ। अल्लाह सुब्हानहु ताला ने उनके हाथ में जो है वो दुनिया के तमाम खजानों की कीस थी, चाबियां थी, और देखकर सामने हजरत इसराफील ने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं ये चाबियां लेकर आया हूँ तमाम खजानों के, और अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ कि या तो ये चाबियां ले लो, सारी दुनिया के खजाने मिल जाएंगे, या मेरा खालिस आब्द बन जाओ, मेरा बंदा बन जाओ। तो रसूल अल्लाह ने फौरन जवाब दिया कि मैं खुदाबंदी मुताल का अब्द बनना चाहता हूँ, बंदा बनना चाहता हूँ। और इसराफील वापिस चले गए। जब जिब्रील से रसूल अल्लाह ने हम कलाम के कहा कि ये क्या वजह थी कि जब इसराफील उतर रहे थे तो आप एकदम घबरा गए, तब जनाब जिब्रील ने कहा, मैं इस जुमले से अपनी गुफ्तगु को आगे बढ़ मैं यहाँ तक आपको आप लोगों को लाना चाह रही थी कि तब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह जब इसराफील दुनिया में आएंगे तो हमने तो यही सुना है कि इसराफील जब दुनिया में आएंगे तब कयामत आएगी, तो जो मैंने जब मैंने इसराफील को आता हुआ देखा तो मैं घबरा। मैंने पहले की पहले मजलिस में भी अर्ज किया था कि खुदा वंदे ताला जब कोई हुक्म का इरादा करता है तो कलम जो है वो लॉ पर लिखता है, लॉ इसराफील के माथे पर आती है, लिखकर लॉ पर लिखने के बाद इसराफील के माथे में वो मुंतकिल होती है यहाँ बीच के पोर्शन में, और फिर इसराफील जिब्राइल तक लेकर आते हैं, वरना इसराफील का काम जो है वो सूर फूकना है, उनका जो दुनिया में आएंगे वो तब वो सूर फूकेंगे। तो यहाँ ये जो जिब्राइल मासूम मलाइका और सरदार मलाइका वो भी रोज अकबर रोज महशर से घबरा रहे हैं, तो मुझे और आपको एक फिक्र की जरूरत है कि जिन्हों जिनसे कोई गुनाह सर्द नहीं हुआ वो ये कह रहे हैं कि ये दिन बहुत अकबर और अजीम दिन है, तो हमें भी तो इसके बारे में कुछ तैयारी करनी चाहिए, हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। यहाँ एक रिवायत रूहुल हयात की मैं पेश करूंगी आपकी खिदमत में कि रूहुल हयात बाकर मजलिसी बहुत बेहतरीन रिवायत इमाम जैनुल आबदीन से कोट कर रहे हैं कि जनाब इमाम जैनुल आबदीन ने जब पूछा कि ये महशर किस तरह बरपा होगा, कयामत कब आएगी और सूर किस तरह फूका जाएगा, तो जनाब जैनुल आबदीन ने बहुत तफसीली रिवायत दी जिसका मैं हदफ पेश करने की कोशिश करूंगी। रिवायत बहुत तवील है मगर मैं कोशिश करूंगी कि पूरी रिवायत आप तक पहुंचा दूं, हदफ पूरा वही रहे, थोड़े से शायद मेरे जुमलों में चेंजेस आ जाए तो वो लफ्ज तो इमाम के हमारे मुंह से निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, मगर कोशिश करूंगी कि पूरी रिवायत आप तक सही तरह से पहुंच जाए। इमाम जैनुल आबदीन इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं कि जब कयामत आएगी, सबसे पहले तो कयामत खुदा का दिन होगा, रोजे महशर अल्लाह सुब्हान तआला कहता है कि ये मेरा दिन है, इमाम जाफर सादिक की हदीस है जिसमें वो कहते हैं तीन दिन खुदा के हैं, अय्यामुल्लाह तीन है, एक इसमें से एक रोजे अकबर है, एक रोजत है और एक कयाम इमाम जमाना है, यानी कि जब इमाम जमाना का, तो ये तीन दिन जो है ये खुदावंद तआला कहता है कि ये मेरे दिन है। तो इसमें रोजे अकबर यानी कि रोजे महशर है। अब रोजे महशर के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि जब रोजे महशर, पहले तो अल्लाह सुब्हान तआला जब इसराफील को हुक्म देगा कि सूर फूके तो इसराफील बैतुल्लाह, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था इसराफील जब दुनिया में आते हैं तो एक उनका पैर सातवें आसमान पर होता है और एक अर्श पे होता है, अर्श इलाही पे, वो भी सातवें आसमान पे यानी अर्श इलाही पे, वहां पर जहाँ पे जिब्रील की हद खत्म होती है, और एक पैर दुनिया में आता है हजरत इसराफील, यानी कि इस कदर जो है वो बुजुर्ग फिजिकली बॉडी वाइज इस कदर बड़े फरिश्ते हैं, तो इनके बारे में मिलता है कि यहाँ बैतुल्लाह पर आएंगे और इनके मुंह में एक सूर होगा। अब वो सूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं उसकी दो शाखें होंगी, उस सूर की जैसे आम आप कोई उसको कोई फूकने की चीज देते हैं तो उसमें एक शाख होती है, यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं उसकी दो शाखें होंगी, और जब वो एक शाख से सूर फूकेंगे बैतुल्ला की तरफ, तो तमाम दुनिया के जितने लोग हैं वो सब मर जाएंगे। फिर जब तमाम दुनिया के लोग मर जाएंगे, फिर तमाम मलाइका देख रहे होंगे, और फिर वो दोबारा ऊपर की तरफ सूर फूकेंगे, और जितने आसमान पर मलाइका और फरिश्ते होंगे वो सब उस वक्त खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, मौत आ जाएगी सबको। और यहाँ इमाम जैनुल आबदीन की रिवायत के जुमले हैं कि फिर अल्लाह जो है वो इसराफील को भी कहेगा मुत बेज़निल्लाह, और इसराफील भी मर जाएंगे। और इसके बाद परवरदिगार आलम अपनी जलालत से पुकार के कहेगा कि अब कौन है बादशाह, कौन है रब्बे जुल जलाल। फिर खुदावंद मुताल वापिस रिवायत के जुमले, मगर ये इस जब खुदावंद ताला ये जुमला कह देगा और ये जो सूर फूका जाएगा, आलम ये होगा कि तमाम पहाड़ जो है आपस में टकराएंगे, यानी कि ये जमीन जो है, ये जो दुनिया की जमीन है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये दुनिया की जमीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस रिवायत में इमाम ने ये कहा है, मगर बाज रिवायतों में मिलता है कि फकत दो जमीन ऐसी हैं कि जो अल्लाह सुब्हान तआला ये दुनिया डिस्ट्रॉय करने से पहले उठा लेगा। एक हमें पता है कि अराफात, मैदान अराफात, और दूसरी जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जो वहां जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दफन है, ये जमीन को खुदा तआला आसमान पे उठाएगा। ये रिवायतों के जुमले अक्सर दूसरी रिवायतों में मिलते हैं, मगर यहाँ जो इमाम जैनुल आबदीन कोट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जमीन पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मौला कह रहे हैं। और उसके बाद मौला कहते हैं कि फिर खुदा वंदे मुताल एक नई जमीन को खल्क करेगा, वो नई जमीन अल्लाह सुब्हान तआला खल्क करेगा, और उसको खल्क करने के बाद अल्लाह सुब्हान तआला वो नई जमीन, इमाम जैनुल आबदीन कहते हैं इसलिए अल्लाह खल्क करेगा क्योंकि ये जो दुनिया की जमीन है ये गुनाहों से इस कदर भर चुकी है कि अल्लाह सुब्हान तआला एक नई जमीन बनाएगा जिसपे हमारा हिसाब किताब होगा। और फिर रिवायतों के जुमले मिलते हैं, या इमाम जैनुल आबदीन ये रिवायत को कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि फिर अल्लाह सुब्हान तआला जब नई जमीन को खल्क कर देगा, उसके बाद पानी को खल्क करेगा, और उस पानी पे अर्शे इलाही, यानी कि उस पानी पे खुदा का जो है वो ताख्त होगा। यहाँ जुमला रिवायत का मिलता है। और फिर यहाँ इमाम जैनुल आबदीन की रिवायत, और फिर इसके बाद इमाम जैनुल आबदीन रोने लग जाते हैं जारो कतार, और ये जो इमाम जैनुल आबदीन की कयामत सूर फूकने की रिवायत है ये खत्म होती है। अब जो कयामत का मंजर इसी किताब मूल हयात में आयतुल्ला बाखर मदलिसी जो है आवा पेश कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इसके बाद और बहुत सारे इमामों की रिवायत उन्होंने कोट की है, मगर मैं उसको मिक्स करके आपको एक मंजर समझाना चाह रही हूँ। उसके बाद क्या होगा, और रोजे मशर, अब यहाँ इमाम जाफर सादी की एक रिवायत मिलती है, मियाद शिनासी में भी मिलती है अक्सर, ये 10 सगफ शिराजी की मियाद शिनाजी में भी है कि इमाम जाफर सादी कहते हैं कि जब जब अल्लाह जब वापिस जो सूर फूका जाएगा, उसके बाद सब मर जाएंगे, फिर वापिस अल्लाह सुब्हान तआला जो है वो सूर की आवाज पैदा करेगा, वापिस लोग जिंदा होंगे। ये इमाम जैनुल आबदीन की, मैं एक वर्ड लास्ट की भूल गई थी, ये वापिस जिंदा होंगे, और फिर वापिस जिंदा होने के बाद अल्लाह जो है वो वापिस इसराफील को जिंदा करेगा, और सारे मलाइका फिर जिंदा होंगे, और सारे अहले जमीन फिर जिंदा होंगे। तो यहाँ इमाम जाफर सादी की एक रिवायत मिलती कि एक जो कबर होगी उसमें से 70,000, 70,000 लोग एक कबर के अंदर से निकलेंगे। अब यहाँ अक्सर उलमा कहते हैं कि जो 70,000 की रिवायत, अगर 70 एक ऐसा राउंड फिगर है, एक ऐसा अदद है 70 कि उसके बाद जो है अनकाउंटेबल है। यहाँ अगर इमाम कह रहे हैं कि 70,000 तो अनकाउंटेबल लोग यानी कि एक कबर में से निकलेंगे। अब ये इस जमीन पर जो अल्लाह सुब्हान तआला ने खल्क, इमाम जैनुल आबदीन की रिवायत के मुताबिक जो कि मैं जिस किताब से पेश करी, मैंने आपको उसका नाम भी अर्ज किया, रूहुल हयात, अल्लामा बाकर मजलिसी की किताब, बेहतरीन किताब। इससे पहले मैंने 2 मजलिस पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि बीबी सैयदा की जिंदगी पे एक किताब पढ़िए, उसका नाम है बैतुल अहजान, ये मुहद्दिसे कुम्मी शेख अब्बास कुम्मी की किताब है, मगर बहुत बेहतरीन किताब है, किताब का नाम है। मैंने ये वादा किया था, मैंने उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा था नाम, और मैंने आपसे कहा था कि मैं फिर किसी दिन अर्ज कर दूंगी, तो वो बैतुल अहजान किताब का नाम। और ये जो मैं रिवायत पेश कर रही हूँ आपके सामने मैशर की, ये जो है वो रूहुल हयात किताब से है। तो यहाँ जो है फिर इमाम, अब आप तसव्वुर कीजिए एक कबर में से 70,000 लोग जब निकलेंगे, और यहाँ रिवायत के जुमले मिलते हैं इमाम जाफर सादिक के कि किसी के जिस्म पे कफन का कुछ टुकड़ा होगा, किसी के जिस्म पे पूरा कफन होगा, कोई पूरा बरहना होगा। अब ये आपके अमाल हैं कि आप किस तरह लेके जाते हैं। और फिर रिवायत के जुमले रिवायतों के मिलते हैं। मैं ये सब रेफरेंस देने जाऊंगी तो हमारा वक्त इसी में निकल जाएगा। रिवायतों के जुमले मिलते हैं कि जो जिस आलम में ये लोग जब निकलेंगे और इनकी गुनाहों की एक अलग इनके साथ तकलीफ और शिद्दत होगी, जिसके साथ जो तौबा किए बगैर मरे होंगे। और जो मोमिन के लिए मैंने पहले पता नहीं अर्ज किया कि मुझे याद नहीं कि जब मोमिन कोई मरता है और उसको अगर मरते वक्त तकलीफ होती है तो इमाम कहते हैं कि तकलीफ उस मोमिन के लिए राहत है। फिर उसके बाद अगर उसके गुनाह, क्योंकि वो तौबा किए बगैर मरा होगा और अगर बाईमान मरा होगा, ये भी मैंने पहले आपको अर्ज कर गई कि बाईमान जो नहीं मरते लोग, फिर उनका बहुत ही सख्ती से हिसाब है। मगर जो बाईमान ईमान के साथ मरा होगा, कलमा बगैर, कलमा शहादतें पढ़ते हुए मरा होगा और तौबा किए बगैर मर गया होगा, तो उसके साथ यह होगा कि उसकी जो अगर मौत सकरात तकलीफ में होगी तो वो उसके लिए एक रहमत है। फिर जो आलम बरजा वो तकलीफें गुजारेगा अगर उसकी आलम बरजा खराब होगी। जैसे कि यहाँ एक वाक्य मिलता है कि एक शख्स इमाम जाफर सादिक की मियाद छिनाजी शहीद मेहराब की आयतुल दस्तगेब शिराजी की जो किताब है, इसमें लिखा हुआ है कि एक शख्स इमाम जाफर सादिक ने कहा कि मरा और उसकी खबर ने जब मुनकिर नकीर आए तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे सारे अमाल दुरुस्त है, मगर एक तुम्हारी जो है वो ऐसी चीज, एक भूल, एक गलती, एक गुना ऐसा है कि जो तुम लेकर आए हो कि जिससे हम तुम्हारी कब्र में 100 ताज़े मारेंगे। तो वो जो मर्द मोमिन था उसने कहा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूं, कम 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 कर करके उसको उसको लेस 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 देन वन, लास्ट में 1 ताज़िया रह गया। और वो 1 ताज़िया उन्होंने कहा कि वो हर हाल में मारेंगे, अब इसको हम 1 से 0 नहीं कर सकते। तो वो शख्स ने कहा मेरी किस गलती पर मुझे ये 100 ताज़िया से 1 ताज़िया मारा जा रहा है। तो उसने कहा कि एक दिन तुमने नमाज पढ़ी थी तो बगैर वजू के पढ़ी। अब यहाँ इमाम जाफर सादिक के जुमले हैं कि जब उसकी कब्र पे वो 1 ताज़िया मारा गया तो उसकी पूरी कब्र आग से भर गई। तो यहाँ अब वो मोमिन, इमाम के जुमले, तो इसका मतलब कि मोमिन की उस वक्त ये अजाब की, ये जो अजाब मिलते हैं कब्र के अंदर, ये हमारा जो है ये मैशर के मैदान से पहले हमारा जो है रिक्टिफिकेशन हो रहा है, अमाल का, अमाल की सफाई हो रही है। क्योंकि जब मैं मरूंगी अजीजाने मन, और जब मैं मदाने मैशर में पहुंचूंगी तो रिवायत रसूल है, रसूल अल्लाह खुद कह रहे हैं कि एक इंसान को जब उसके हिसाब किताब के लिए उठा, अभी मैं एक जो अगर वक्त की कमी नहीं रही है, मुझे टाइमिंग का कुछ अंदाजा नहीं कितनी बजे छुट गया, मगर मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरी कर सकूं अपनी बात, जो मैं कर नहीं सकी तो उसको हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं इमाम के रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि एक इंसान का जब महशर के मैदान में हिसाब किताब होगा तो उसको पूरा बुलंद की, अभी अव्वल तो जब हम महशर के मैदान में महशूर होंगे तो आलम सबका एक होगा, सब अपनी गुनाहों की शक्ल में, क्योंकि इमाम जाफर सादिक की हदीस है और सबों ने जो है उसको मीना रोजे महशर में या मियाद छिनासी रोजे कयामत के वक्त के लिए ये रोजे महशर नोट किया कि जब लोग उठेंगे तो रसूल अल्लाह की हदीस है कि लोग जानवरों की सूरत में उठेंगे, कोई बंदर की शक्ल में, कोई सूअर की शक्ल में, और अलग अलग जो है सबकी, कोई पिक की शक्ल में और कोई एनिमल्स शक्ल में लोग उठेंगे। तो यहाँ एक ये अजाब में एक कौम आएगी जो अलग जानवर की शक्ल में होगी, क्योंकि गुनाह ऐसे क्यों होंगे, बाद ऐसे होंगे कि जिनके पूरे जिस्म से, जिनकी शर्मगाहों से जो जिना करते होंगे उनकी शर्मगाहों से बदबू निकल रही होगी, और ऐसी बदबू निकल रही होगी कि उसका जो पड़ोस में बराबर में जो खड़ा होगा वो कह रहा होगा कि मुझे मुझे इससे निजात दे दो। यानी कि आलम सब अपने गुनाहों के साथ महशूर होंगे अगर तौबा नहीं की और अगर तहारत के साथ, नफ्स ताहिर के साथ नहीं मरा। तो यहाँ एक तो ये मुश्किल, उस पे अब आप खुद इसको तसव्वुर कीजिए कि यहाँ रसूल अल्लाह के जुमले मिलते कि एक इंसान जो है वो अपने पैरों पे इस तरह नहीं खड़ा होगा, वो अपने टोस पे, अपने अपने अंगूठे के बल पे, अपने नेल्स के बल के ऊपर खड़ा होगा, इतनी जगह मिल जाएगी इसको खड़े होने के लिए। और इतने सारे लोग जो मैशर के मैदान, एक शोर शाम का आलम बरपा होगा। यानी कि ये जो रिवायत के जुमले के माँ बाप से भाग रहा होगा, माँ बाप एक दूसरे से भाग रहे होंगे, मियाँ बीवी शौहर बीवी एक दूसरे से भाग रहे होंगे, बच्चे जो है वालदैन को ढूंढ रहे, वालदैन से भाग रहे होंगे कि ये हमसे नहीं किया, एक एक अजीब सा नफसा नफसी का दौर होगा जिसमें इंसान इंसान से बेचैन होगा। और वहां जो है फकत, यहाँ रिवायत के जुमले जो रसूल अल्लाह और अहले बैत जो होंगे सब अलमान अलमान कर रहे होंगे, रसूल अल्लाह उस वक्त जो है अपने मोमिन जो तकलीफ में होंगे उनको रसूल शिफात के लिए चूट रहे होंगे। तो ये एक बेहतरीन रिवायत। और फिर उसके बाद फिर मिलता है कि जो गुरोह में लोग आएंगे इनके मुतालिक मिलता है कि 8 ग्रोह ऐसे होंगे, 8 ग्रोह रसूल अल्लाह के एक रिवायत के मुताबिक मिलता है कि रोजे मैशर में 8 ग्रोह ऐसे होंगे कि जिन्हें जब लाया जाएगा इनके बारे में मिलता है कि बगैर हिसाब किताब। अभी मैं ये 8 ग्रोह मैं लास्ट में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जो वक्त की कमी, तो ये 8 ग्रोह को हम कल करेंगे। तो जब हिसाब किताब, एक ये 8 ग्रोह को छोड़ ही दीजिए, ये तो आते ही इन पे जो है अजाब शुरू हो जाएगा मैशर के मैदान में। पर वो लोग जो हिसाब किताब के काबिल होंगे वो जब आएंगे तो उनको क्या, उनको किस तरह, एक जैसे कि मेरी जब टन आएगी तो टन्स के लिए लोग वेट कर रहे होंगे, यहाँ तक कि जहन्नुमी चिल्ला रहे होंगे कि हमें हमें जल्दी से जहन्नुम में डाल दो, हमें हमें खिजालत का और शर्म का आलम ये होगा कि लोग कह रहे होंगे कि मामा अगर जहन्नुम में हमें जहन्नुम में डाल दो। मगर वो इंतजार, और जब खुदावंद आलम की एक, वो कह रहे ना जब नफसा नफसी होगी, सब खुदावंद मुताल के अर्श से अल्लाह की एक धार सुनाई देगी, उस वक्त आलम ये होगा कि लोगों के दिल उनके सीनों में ढल जाएंगे, खुदा अपने जलाल से आवाज देगा और उसके बाद सब खामोश हो जाएंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा। और फिर एक एक मोमिन को जो है मैशर के मैदान में पूरा उसको ऊंचा किया जाएगा, और ऊंचा करने के बाद उसको नाम से पुकारा जाएगा। जैसे कि मैं अपनी मिसाल ले लूं कि परवीन, और कहते हैं कि परवीन नजर अली मेरे हस्बैंड की फैमिली का नाम है, या मेरे वालदैन का परवीन गुलाम अली के नाम से मुझे उठाया जाएगा, और फिर उसके बाद मुझे खड़ा किया जाएगा, और खड़ा करने के बाद मुझे ऊंचा किया जाएगा, मुझे इतना बुलंद किया जाएगा कि जितने मैशर वाले उनसे मैं ऊंची हो जाऊंगी तो हर कोई मुझे देख रहा होगा, पूरी तरह से मुझे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और फिर उसके बाद, अभी तो मेरा हिसाब शुरू नहीं हुआ होगा, रिवायत के जुमले मिलते हैं कि फरिश्ते निदा देंगे कि जो जिसका जिस जिसका ये जिस जिसका इस पे हक है वो आ जाए अपना अपना हक लेने। और उस वक्त रिवायत के जुमले हैं कि इंसान ऐसे ऐसे लोगों को देखेगा जिन्हें कभी वो जानता भी नहीं होगा, उनसे कभी जिंदगी में मिला भी नहीं होगा। ये रिवायत के जुमले हैं कि इंसान जानता नहीं होगा, मिला नहीं होगा, और लोग आ रहे होंगे और बोलेंगे कि हमें हमारा, तो मैं परेशान होकर पूछेगा मोमिन बंदा है, इंसान पूछेगा कि तुम कौन हो, तुम्हें जानता भी नहीं, तुम्हें कभी दुनिया में मैंने नहीं देखा। तो बोलेगा कि नहीं, फला वक्त फला शख्स से तुम जब फोन पे बात कर रही थी वो तुम किसी के नाम लेके बता रहा था वो मैं हूँ, पर क्योंकि तुम मेरी उस गीबत में शामिल हुई थी। अजीजान मोहतरम, गीबत अलग चीज है, तोहमत अलग चीज है, हम लोगों ने हर चीज को मिक्स कर दिया है। गीबत की डेफिनेशन गुनाह ने कबीरा में आयतुल्लाह से के शिरादी लिखते हैं, अगर किसी को बुरा काम करते हुए देखो और बोल दो तो गीबत है। अब वो होता है कि वो देखे बगैर, अब मुझे किसी ने बोला मैंने तो देखा ही नहीं और मैंने जो आगे बात बढ़ाई तो गीबत, तोहमत, इस तरह मेरा गुनाह डबल ट्रिपल होता चला जाएगा। अब यहाँ रिवायत के जुमले होते हैं जब वो शख्स चिल्लाएगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो बोलेगा नहीं मैं तो अपना हक लेने आया हूँ मुझे दो। अब वहां पर इस नफसा नफसी में आप क्या देंगे, आपके पास क्या होगा देने के लिए, कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया में जिस करेंसी के लिए मैं तड़प रही हूँ, मर रही हूँ कमाने के लिए, करोड़ों हजारों लाखों रुपये के पीछे मैं भाग रही हूँ, जबकि मैंने पहले भी अर्ज किया खुदावंद ने मुताल ने कुरान में कहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है, खुदा वादा कर रहा है कि रोजी मैं दूंगा, उसके पीछे भागो मत, भागो मत। और हम उसी के पीछे भागे चले जा रहे हैं। आज जहां पे दुनिया में नजर कर लीजिए, हर किसी को यही फिक्र है कि कल मैं ये 1,000 को 2,000 और $3,000 पाउंड या एरो या रुपया किस तरह कर लूं, इसके अलावा मेरी और कोई फिक्र नहीं। पैसे को मैं दुगुना किस तरह कर लूं, मगर कभी भी मैं ये फिक्र नहीं कर रही हूं कि वहां वो जो मैंने कहा ना कल्प की आंखें खुली नहीं है कि मैं किस तरह वहां मेरा क्या होगा। यहाँ के पैसे के लिए मैं दौड़ी चढ़ी, जबकि अमीरुल मोमिन कह रहे हैं ए इंसान तू फिक्र कर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि तू जो है वो, मुझे तो ये समझ नहीं आता। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, आज एक चीज मैंने अक्सर देखी पूरी दुनिया में, हर जगह यही हाल है, सबका यही हाल है। थोड़ी सी दौलत आ जाएगी, थोड़ी सी एजुकेशन आ जाएगी, थोड़ा सा मैं फिक्र या दीन पढ़ लूंगी, थोड़ी सी मैं मजलिस से पढ़ लूंगी, ठीक है, कुछ भी मेरे पास थोड़ा सा आ जाएगा तो मैं दूसरे लोगों को जीरो समझना शुरू हो जाती हूँ। क्यों भाई, ये कहां से ये तकब्बुर क्यों आ रहा है मेरे अंदर? एक सेकंड की जो मेरे अंदर अगर फिक्र हो तो मैं ये सोचूंगी कि अगर मैं डॉक्टर इंजीनियर बनी तो ये अकल की वजह से बनी, और ये अकल मुझे किसने दी? खुदा ने दी, तो मुझे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि मुझे तकब्बुर करना चाहिए। अमीर मोमिन कह रहे हैं ए इंसान तू फिक्र कर, मौला कह रहे हैं, क्योंकि अगर तू तेरी पैदाइश को समझ ले तो तू कभी भी तकब्बुर नहीं करेगा। क्यों कह रहे हैं मौला लिए? इसलिए कि अगर मैं मेरी शुरुआत को फिक्र करूं कि दो नजिस कतरों से मैं पैदा हुई हूं, एक वो कतरा है कि जिससे मुझे गुस्ल वाजिब होता है, और दूसरा वो कतरा है कि जिससे मर्द औरत दोनों को गुस्ल वाजिब होता है, और एक कतरा वो है कि जिससे औरत को गुस्ल वाजिब, खून और मनी, नजिस नुत्फे से मैं पैदा हुई, मैं मेरी शुरुआत नजासत से मुझे कैसे तकब्बुर आ रहा है। और मौला अली के जुमले, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं इंसान तू चलता फिरता, इंसान चलता फिरता टॉयलेट है टॉयलेट, मौला की जुमले गलाजत, अगर उसको मैं फसी अरबी में कहूँ तो गलाजत, फिर कैसे मुझे गुरूर तकब्बुर आ रहा है। और ये महशर के मैदान में जब मैं पहुंचूंगी तो मेरे पास कुछ देने को नहीं होगा, दुनियावी करेंसी नहीं होगी मेरे पास देने के लिए। और वहां फिर क्या होगा कि जो लाइन एक लग गई है मुझसे मांगने के लिए कि अब मुझे दो, कहां से दूंगी? मेरे तो रसूल अल्लाह की हदीस है कि नेकी कर उसको बचा के रख, मैं हर जगह पढ़ चुकी, मुझे लगता है इसको मुझे डिटेल में और इसको जाने की, इसकी डेप्थ में जाने की वी डोंट नीड टू, हम लोगों को जरूरत नहीं है कि इसकी डेप्थ में हम जाएं। देखी कर और उसको बचा कर ले जा, बची हुई होगी अगर वहां तो दुरुस्त, और अगर जो नहीं होगी तो सिर्फ गुना होंगे, और अगर अब गुना होंगे तो अब कैसे दूंगी? अब पहले तो नेकिया होंगी, अरे चलो छोड़, चलो इसकी मिसाल ले लेते हैं अच्छी चीज से, पॉजिटिव पॉइंट से चले, पॉजिटिव पॉइंट हमेशा पॉजिटिव पॉइंट से सोचना चाहिए। तो अब ये अगर नेकिया होंगी 15,000, 20,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, कभी हम ये नहीं सोचते, हम गुना के बारे में अक्सर सोचते हैं, गुना नहीं है मेरे, मैंने माफी मांगी बस, तो कभी ये नहीं सोचते कि नेकिया कितनी, कभी गिन भी लूंगी दिन में कितनी नेकिया किया है, और ये भी सोच लू गुना कितने किए। ये खाली मुहासबा कर ले इंसान रात को सोने से पहले तो बहुत ही सुधार आ जाएगा हमारी जिंदगी में, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि हमारा चाहने वाला जो है वो मुराकबा, यानी मुहासबा किए बगैर, मुराकबा और मुहासबा और मुराकबा किए बगैर वो नहीं होता है, उसका एक दिन हमारे शिया का एक दिन दूसरे दिन से आगे होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। चले अब ये चले हम इसको छोड़ देते हैं, ये कलर ऐसे, अब ये नेकियां बहुत पहाड़ है मेरे पास नेकियों का, मिसाल ले लें जो तुम खुदावंद मुताल की रहमत है वाकई में। तो तब ये आया बंदा, एक औरत आई, उसकी गीबत की है, तो गीबत की है या गीबत तोहमत की है, गीबत तोहमत मिल गई है, या फिर उस पे बोहतान बांध दिया है, बहुत गुनाह की कैटेगरी बढ़ती चली जाएगी। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फरिश्ते बोलेंगे इसका क्या है, कुछ नहीं, क्या इसकी गुना, इसकी निकिया डालो, मेरी सारी निकिया उसके उसके काउंट में चली जाएंगे, उसके काम। ये लग रहा है मुझे यहाँ दुनिया में आजीज आने मन मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, मगर वहां रिवायत के जुमले इंसानों की आंखों से खून निकलेगा, खून खून रोएगा, खून रोएगा जब वो खाली होता है, एक नेकी को भी जाता हुआ देखेंगे ना, खून रोएगा इंसान। बहरहाल दो लोगों में नेकियां तो सब चट होंगी, चलो बहुत बहुत तो 10 लोगों में 20 लोगों में गीबत तो करते चले आ रहे हैं, हमारा तो यही काम है। व्हाट्सएप के ग्रुप बनते हैं, हमको पता होना चाहिए कि फले फला इंसान ने क्या किया, फला ने क्या किया, फला ने क्या किया, ये व्हाट्सएप के ग्रुप में आज यही काम चल रहा है। अच्छा एक बात और बताती चलू, अर्ज करती चलू माजरत के साथ, वो ये नेकियां भी हो रही होंगी, मैं मानती हूँ कि सुबह उनको दूसरे रबुल मलाइकत वरू की तस्बीह काट लो, आज अर रहमान पढ़ लो, अर रहमी अर रहीम पढ़ लो, पर होते हैं ऐसे भी ग्रुप होते हैं, उनको वाकई उनको सलूट है कि जो कुरान के सिपारे शेयर करके कुरान के सिपारे पढ़े, मगर जो यहीं तक कायम है तो बहुत बेस्ट है कि दीनी तबलीग के लिए, मगर उसको जो हमने गुनाह के कामों में यूज कर लिया, और जो दूसरे हमारे ग्रुप बनते हैं फैमिली ग्रुप्स, और जो वो ग्रुप्स बनते हैं आजकल तो बहुत ही ट्रंट चला हुआ है, ये व्हाट्सएप का ट्रंट चला हुआ है। अजीजाने मन कोई भी बात अगर मैंने तहकीक बगैर बोली और रजा बगैर इजाजत बगैर बोल दी, फोटो डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नैप्स बहुत डालते हैं। अच्छा वो बचपन की कभी किसी की याद आ गई, अच्छा मैं छोटी थी, मैं हिजाब पाबंद नहीं थी, चले एक मिसाल, हिजाब की पाबंद नहीं थी और मेरी बेहिजाब तस्वीर है, 14-15 साल 16 साल की उम्र में, 9 साल के बाद बालिग हो गए, शऊर नहीं था, जहालत के अंधेरे में थे, अब चूंकि हिजाब आ गया, अब मेरी इजाजत लेनी, मेरी तस्वीर डाला डाली करे, मेरी देखो सब, तो ये हराम है, ये हराम है। और जो हमारी सिस्टर्स ग्रुप बनते हैं उसमें हम लोग जो बेहिजाब बहनी है, बहन को भेज रही, जो बहन के शोहर, कोई मेरा कुछ नहीं नाम मेहर, जो बहन के शोहर की नजर सरसरी सी भी पड़ गई तो हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तमाम मुश्तहिदों की आप किताब उठाएंगे ना, उसमें लिखा हुआ है, रसूल से भी हदीस है कि रसूल अल्लाह ने कहा है कि अगर एक औरत अपने घर से बन ठन कर, चलिए बन ठन कर भी नहीं, हम उसको भी छोड़ देते हैं, चलिए हम सादा निकली बेहिजाब, तो रसूल अल्लाह कहते हैं कि औरत के गुनाह को तो छोड़ ही दीजिए, मगर शौहर वो उस शौहर पर वो जितने कदम चल रही है, तमाम आसमान के फरिश्ते, आजीजाने मन हम सोच भी नहीं सकते कि कितने फरिश्ते आसमान पे आसमान का रंग बनाए, सब लानत दे रहे। और ये मेरे जैसे कि कहते हैं सवाबे जारिया, अनकाउंटेबल नेकियां गढ़ती चली जाती है जब आप दुरूद पढ़ते हैं, अनकाउंटेबल, यहाँ तक के फरिश्ते कहते हैं हम गिन नहीं पा रहे, तो अल्लाह कहता है कि बस लिख दो सलावत तो मैं दे दूंगा, आ जाओ। तो इसी तरह गुनाह भी अनकाउंटेबल होते हैं, और गुनाहों की कैटेगरीज हैं, जैसे कि एक गुना ये है कि मैं तन्हाई में करूं, वो गुना रहा खुदा और मेरे दरमियान, ठीक। एक गुना वो है कि मैं अलल ऐलान करूं, सबको गवाह बना दूं, उसका गुना अलग है। फिर एक गुना ये होता है कि जो है कि मैं अलल ऐलान भी कर रही हूं और जगह भी काउंट हो रही है उसमें कि किस जगह पे कर रही हूँ, फर्श अदा जैसे मिसाल ले लें। एक गुना हो, एक गीबत होती है कि मैं गीबत कर रही हूँ अपने घर में, ठीक है वो गीबत हो गई, एक गीबत का गुना। और एक गीबत वो होती है कि मैं मजलिस के बाद बैठकर फर्श अज़ा में कर रही हूँ, तो वो फर्श अज़ा के एहतराम, क्योंकि वो फर्श अज़ा का एहतराम है, तो वो उस तरह जिस तरह मेरी नेकियां बढ़ती हैं वहां, उस तरह मेरे गुना भी बढ़ जाता है, मगर मुझे फिक्र ही नहीं है मुझे पता ही नहीं। और एक कुफर नबाशुद बोलते हैं अक्सर लोगों के मुंह पे बहुत आता है कि मरने के बाद किसने देखा है क्या होगा। आइमा अलैहि सलाम कहते हैं ये तो जिसने कहा उसकी वो तो हमारी शिफात को भूल ही जाए, क्योंकि जब उसने जो है वो उसूले दीन को ठुकरा दिया तो वो कहीं भी वहां हमारी शिफात को भूल जाए। अहले बैत कहते हैं इमाम जाफर सादी की हदीस है कि अपने अकीदे को हमारे हमारे ऊपर से दुरुस्त लेकर मरोगे तो हम शिफात करेंगे। इमाम जाफर सादी की हदीस बता रही हूँ, आयतुल हदीस सगीब शिराजी की किताब का नाम है मियाद शिनासी, बहुत ज्यादा चीजें हैं उसमें, बहुत इट्स अ बिग वन, वो बड़ी किताब है बहुत, उसमें कह रहे हैं इमाम जाफर सादी ये जो मैशर के मैदान में हम शिफात करेंगे शिफात करेंगे, इसकी आप लोग जो सर्टिफिकेट लेके हम फिर रहे हैं ना, शिफात होगी शिफात होगी, पर मेरा अकीदा कैसा है ये भी डिपेंड होगा, मैं कितना चाहती। मैंने पहले भी बताया था, वर्दी फैस किया था कि हारून मक्की का बता चुकी हूँ मैं, आग में बैठ गए थे, ऐसे कितने इमाम ने कहा था ऐसे जाएंगे तो हम कैसे। आज मैं इमाम जमाना आए और मुझे कहें कि परवीन जाओ आग में कूद जाओ, मेरे अंदर है वो, मेरे अंदर इमाम जमाना की इतनी मोहब्बत है कि मैं इमाम जमाने के लिए कर पाऊं, कि मैं इमाम जमाने को नाउज बिल्ला सिखाने बैठ जाऊंगी, मौला आप क्या कह रहे हैं मैं मर जाऊंगी तो हराम, आप तो हराम काम के लिए कह रहे हैं। मासूमीन कभी करेंगे नहीं ये, आपको टेस्ट करने के लिए तो कर सकते, आप कहाँ है हम कहाँ है, फिर हम बोलेंगे हम लब्बैक या हुसैन गए सिर्फ और सरी 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 में इमाम नाउज़ बिल्ला। यहाँ तक रिवायत के जुमले कि जो जवान अपनी दाढ़ी को रेज आउट करता है करबला के मैदान में इमाम हुसैन के जख्मी बदन को उसने लात मारी, तो फिर और बेहिजाबी का तो छोड़ ही दीजिए, बीबी जैनब तो आपको ए जैनब की चादर का मातम करने वाली बोलेंगी, मेरी चादर तो यजीदियों ने छीन ली, तेरी चादर किसने छीनी, और फिर क्या जवाब देंगे हम, कहाँ हैं हम, हराम खा खा के गलाजत और नजासत खा खा के इस कदर नफ्सों को कल्ब को काला कर दिया ब्लैक कर दिया कि वो कुरान की आयत जो रसूलुल्लाह से पूछा गया कि ये दुनिया में देखने वाले अंधे और गूंगे और बहरे मैशर होंगे, वो मैंने यहां पर भी सच कर दी, यानी कि आंख होते हुए भी अंधे हैं और मुझे एहसास ही नहीं, एक तो गुनाह कर रही हूँ उसमें मैं फखर, मैंने मुझे याद नहीं है अमीर मोमिन की रिवायत को मैं शायद आपके सामने पेश कर चुकी हूँ शेख अब्बास कुमी की, कि लानत दे रहे हैं अमीर मोमिन ऐसी औरतों पर, क्योंकि लेडीज का मन है, हम लेडीज की अभी लेडीज की मजलिस हो रही तो मैं कहा हूं? आया मैं अपने शोहर की इतनी इताअत कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं खुद भी नहीं करती हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए, आइए मैं अपने शोहर की इतनी इताअत कर रही हूँ कि जितनी खुदावंद मुताले रसूलुल्लाह मुझे सिखा के नहीं, कि मैं अपने शोहर को बोले आप तो चुप ही हो गई, इतनी मैं इंटेलिजेंट हो गई आज, जबकि अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं रिवायत के जुमले पेश कर रही हूँ मैं अजीजा ने मन, कि मैंने एक मर्द को औरत से सुपीरियर बनाया है ये अल्लाह कह रहा है, मगर मैं इसको झुटलाती चली जा रही हूँ, जरा सा भी मेरे अंदर आज की यूथ के बारे में अगर मैं बोलूं तो जरा सा भी हम में सब्र नहीं है, मेरा वक्त खत्म हो गया और इंशाल्लाह कल हम ये मैशर को और आगे बढ़ाएंगे और आठ ग्रोह का मैं तस्किरा करूंगी कि वो कौन से आठ ग्रोह हैं जिन पर हिसाब किताब की बात नहीं है, फौरन वही मैशर के मैदान में अजाब शुरू हो जाएगा और पूरा मैदान मैशर देखेगा वो अजाब उनके ऊपर हो रहा होगा। ये आठ ग्रोह ऐसे हैं जो तौबा किए बगैर मर गए। फिर मैं कहूंगी ऐसा नहीं है खुदावंद मुताले जब तक मैं जिंदा हूं तौबा का दरवाजा खुला रखा है, ये मुझे बस अब इसको रिफ्रेश करना है, मुझे सोचना है इस पे, फिक्र करनी कि मुझे करनी है तौबा या नहीं। तौबा भी ऐसी तौबा कि फिर ये गुना कोशिश करके ना करूं। अब वो तो मैं ये तो नहीं कह सकती आपको कि आप लोग अपनी आंख पे उंगलियां जलाएं, हम तो है ही नहीं वैसे, आधी उंगली इतना समय आंख पे रख नहीं सकते। वो मोमबत्ती के लौ पे हाथ रखेंगे तो ऐसे ऐसे गुजरे हैं लोग जिन्होंने, जिन पर खुदा ने अपनी इनायतें की हैं अजीजा ने मन, और उन्होंने अपने नफ्स के जहाद किए हैं, तो उनको खुदा ने बहुत सारे तोहफे बख्शे हैं। एक एक रिवायत में जो एक बहुत मशहूर वाक्य मिलता है कि एक बहुत खूबसूरत टेलर था, कपड़े बेचने वाला, खूबसूरत लिबास बेचता था। एक औरत ने खास उसको बुलवाया था क्योंकि बहुत खूबसूरत, घर में आया तो दरवाजे को बंद कर दिया और फिर उससे कहा कि मैं गुनाह के लिए तैयार हूँ। तो वो शख्स समझ गया कि अब कुछ कहना बेकार है, उसने कहा मैं टॉयलेट यूज करना चाहता हूँ, और सारी गलाजत अपने जिस्म पर टॉयलेट की लगा ली थी। और फिर उसके बाद वो औरत ने उसको निकाल दिया, बदबू आ रही थी, निकाल दिया। जब घर आया, गुसल उतारा, तहारत की और दो रकात नमाज अदा की, और उसके बाद से वो कहता है दो रकात नमाज के बाद उसके जिस्म से ऐसी खुशबू आती थी जो किसी भी इत्र में नहीं थी। अल्लाह सुब्हान व तआला ने तोहफा दिया, नफ्स का जहाद किया। तो आया हम इस इन सब चीजों में कहाँ आ रहे हैं? पूरी मेरी मजलिस का आप निचोड़ लें तो यही है कि मुझे फिक्र की जरूरत है। जब मैं फिक्र करूंगी कि मैं गुनाह कर रही हूँ, पहले तो मुझे अवेयरनेस करनी पड़ेगी, मुझे वेकअप होना पड़ेगा। जब मैं वेकअप हो जाऊंगी तो फिर मैं फिक्र करूंगी, जब मैं फिक्र करूंगी उसके बाद जाकर मैं तौबा तक आऊंगी, फिर मेरी आंख से आंसू निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। याद करूंगी मैं बैठ के कि अब तक जवानी से बालिग होने तक कितना कुछ कर लिया, फिर वो खुदा से एक मेरा रब्त एक कनेक्शन कायम होगा, फिर मेरी आंख में आंसू, वो आंसू जो मेरी आंख से निकलेगा तौबा का, रिवायत के जुमले हैं कि जहन्नुम की आंख को खुदा के खौफ से जो आंखों से आंसू निकलते हैं, जहन्नुम की आंख को ठंडा कर देते हैं। एक ये आंसू और एक वो गुस्सा जो पी जाता है इंसान सब्र करता है गुस्से पे, कोई किसी को आपकी तौहीन करे, आपको बेइज्जत कर दे और आप उस पर सब्र कर जाए, सब्र भी कहते हैं कि हिल्म है, अल्लाह सुब्हान तआला को बहुत पसंद है, ये भी जहन्नुम की आग को कम करता है। तो मैं अपनी जिंदगी में क्या कुछ कर रही हूँ मुझे सोचने की जरूरत है। अब दो जुमले मसाइब के पढ़ूंगी और आपकी जहमतों को तमाम कर दूंगी। आशूरा चली गई और अफसोस और दुख की बात यह है इन अयाम में, इस साल के अयामों में, कि हम उस तरह से आज़ादारी का हक, हक तो हम कभी अदा कर ही नहीं सकते, मगर उस तरह से आज़ादारी हम नहीं कर पाए कि जिस तरह हम हर साल बर्पा करते हैं। और मैं तो समझती हूँ कि शायद रोने के लिए ये जुमले बहुत है, मगर फिर भी क्योंकि फर्श ज़ा बिछा के सब अपने घरों में बैठे हैं तो हम बीबी को पुरसा दे दें। रिवायत के जुमले मिलते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम से किसी ने पूछा कि मौला इतना शाम 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 करके रोते हैं, मौला रोने लगे और रो के बहुत सारे मौला ने मसाइबों को बयान किया है। मैं तो समझती हूँ कि अगर ये जुमला जो मौला का मैं अभी बयान करूंगी पूरी रात रोने के लिए काफी है। मौला कहते हैं कि जब करबला से कूफा, कूफा से शाम काफी है। और मौला कहते हैं कि 18 गले थे और एक रेशमा थी, 18 गले हम सब के उस एक रस्सी में बंधे हुए थे, मौला कहते हैं। और ये पूरे रास्ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मैं रुकू की हालत में चला हूं, मैंने अपनी
कमर को सीधा नहीं किया मौला कहते हैं। जब पूछने वाले ने सवाल करने वाले ने पूछा मौला क्यों, तो मौला ने कहा जब मैं जरा सा अपनी गर्दन और सर को उठाता था तो बाकर चिल्ला के कहते थे कि बाबा मेरा गला घुट रहा। रोने के लिए यही काफी है कि पूरे रास्ते मौला रुकू की हालत में कैसे तय किया होगा ये मौला ही जाने। जब 11 मुहर्रम आई है और बीवियों को रसन में बांधा गया है, पहले 18 गले एक रेशमा में बांधे गए हैं और उसके बाद हाथों में रेशमा पसे पुष्ट बांध के ले जाएंगे। और रिवायत के जुमले मिलते हैं, मैं पहले भी अर्ज कर गई कि जब यमने साद ने आवाज दे के कहा कि अब लाशों की पामाली करेंगे, तो एक मरतबा जनाबे ज़ैनब तड़प गई। इमाम रजा की एक रिवायत को पेश करूंगी। इमाम रजा कहते हैं कि हमारा सलाम हमारे उस जद पर कि जब उनके लाशें को पामाल किया गया तो अरब के घोड़ों को जो शूज पहनाए जाते हैं वो 3 किस्म के थे मौला कहते हैं। एक था वो सादा लोहा था प्लेन, और दूसरा कहते हैं कि दूसरे किस्म का जो शूज होता था उसमें कीले लगी होती थी नोकीली, और एक उससे सख्त किस्म का शूज होता था जिसमें पूरी ब्लेड लगी हुई होती थी, ब्लेड बाहर होती थी उस शूज में। और इमाम रजा सर को पीट के कहते हैं कि हमारा सलाम हमारे जद पर कि जब उनके लाशे को पामाल किया गया तो वो धारदार ब्लेड वाले शूज घोड़ों के पैरों में पहनाए गए। इमाम रजा की हदीस है कि अगर वो किसी पथरीले छोटे पहाड़ पर अगर वो घोड़ा दौड़े तो वो पहाड़ भुक्का होकर जमीन दे जमीन बोझ हो जाए। और इस तरह जो है वो रिवायत के जुमले मिलते हैं, 12 घोड़ सवार इस तरफ और 12 उस तरफ थे और दोनों तरफ से घोड़े दौड़ाए गए इमाम हुसैन की लाश पर। रिवायत के जुमले मिलते हैं, इमाम रजा कहते हैं कि जब इमाम हुसैन के लाश और अली असगर की लाश करीब करीब पड़ी हुई थी, और एक मरतबा जब मौला ने जब उमर साद ने ये हुक्म दिया कि लाशों की पामाली करो तो इमाम हुसैन ने अपनी लाश को उल्टा उल्टा कर अली असगर के ऊपर ले आए, और जब घोड़े दौड़े हैं तो अली असगर इमाम हुसैन के सीने में पैवस्त हो गए। जब 11 मुहर्रम को लाशों की पामाली से पहले जनाबे ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिवायत करते हैं कि जब 11 मुहर्रम को जब जख्मों के बारे में सवाल किया गया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जब मेरी फूफी ज़ैनब एक मरतबा मैंने देखा 11 मुहर्रम को मेरे बाबा की लाश का तवाफ कर रही थी तो मैं एकदम घबरा गया। मैंने घबरा के पूछा फूफी अम्मा बाबा की लाश का तवाफ क्यों कर रही है, तो एक मरतबा जनाबे ज़ैनब ने कहा कि या ज़ैनुल आबिदीन मैं हुसैन के जिस्म में भूसा देने की जगह ढूंढ रही हूँ मगर एक नगीने के बराबर भी हुसैन के जिस्म में जगह नहीं है कि जहां मैं भूसा दे सकूं।